सब बातों ने नैना को पूरी तरह से बेचैन कर दिया था। अचानक से वो खुद को रोक नहीं पाई और राजवीर का एड्रेस निकालकर उससे मिलने के लिए जहां पहुंची थी, वहीं राजवीर बड़ी सी स्क्रीन पर नैना को अपने घर के बाहर लगे कैमरे में देख रहा था। वो सब कुछ देखते हुए सेब खा रहा था और मुस्कुराकर बोला था, आप आ गए नैना माथुर, बहुत टाइम लगा दिया आपने, मुझे लगा आप नहीं आओगे, लेकिन छोड़ो ये बात, आप आई हैं सचमुच। 24 घंटे में राजवीर को पूरा यकीन था कि उसके इस तरह के एक्शन के बाद नैना जरूर आएगी, और ऐसा ही हुआ था। नैना ठीक उसके घर के सामने मौजूद थी और उसे लगातार दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। अब एक नौकर ने आकर राजवीर को बताया कि कोई लड़की उससे मिलने के लिए आई है, लेकिन राजवीर ने ठंडे स्वर में मना करते हुए कहा कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता, उसे लड़की को वापस भेज दो। ये सुनकर तो नैना पूरी तरह टूट गई और बोली थी, ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर जिंदल, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ दरवाज़ा खुलवाइए, मुझे आपसे मिलना है। लेकिन राजवीर ने सख्ती से मना कर दिया। नैना गुस्से और दर्द में कैमरे के सामने आकर बोली थी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मैंने आप पर हाथ उठाया, ये देखिए। ये बोलकर नैना ने खुद को ही कैमरे के ठीक सामने खड़े होकर 3 थप्पड़ मार लिए थे। वो बोली थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये देखकर राजवीर जोर जोर से हंसने लगा था। पूरे घर में उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी, लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मजबूर होकर नैना मायूसी में वहां से वापस अपने घर चली गई। इस वक्त उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके जाने के बाद भी राजवीर कुछ देर तक मुस्कुराता रहा, फिर अचानक उसका चेहरा डार्क हो गया और वो बोला, एक तो थप्पड़ खुद को मारने से कुछ नहीं होगा नैना माथुर, और वैसे भी तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, मेरी पसंदीदा औरत हो तुम, तुम्हें खुद को थप्पड़ नहीं मारने चाहिए, लेकिन हाँ, तुमने हजारों लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, और खासकर तुम्हारे भाइयों को जिन्होंने मुझे कुत्तों की तरह मारा है, उन्हें भी मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर राजवीर के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान बनने लगे थे। वहीं दूसरी ओर नैना बदहवास हालत में अपने घर पहुंच गई थी। इस वक्त वो पूरी तरह टूटी हुई थी और आज ही के दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले भी आने वाले थे। ये बात उसके दिमाग से पूरी तरह निकल चुकी थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसने देखा कि पहले से ही मेहमान हॉल में बैठे हुए हैं। नैना का चेहरा उदास और बुझा हुआ था, लेकिन उसके भाइयों ने जैसे ही उसे इस हालत में देखा, वे सच में घबरा गए, क्योंकि नैना हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी और सबकी मदद करती थी, लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर सभी हैरान रह गए। फटाफट उसके एक भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है छोटी, क्या हुआ, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले तुमसे मिलने आए हैं, लड़का बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, हमें तो वो तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया, बस तुम एक बार उससे मिल लो। नैना चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई और मजबूरी में जाकर सबके सामने बैठ गई। लड़के वालों ने उसे पसंद कर लिया और सगाई व शादी की तारीख तय करने के बाद ही वहां से गए। उनके जाते ही नैना फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर उसके भाई बोले, तो तुम हमें पहले क्यों नहीं बताया, और अब अचानक ये बात कैसे? नैना के माता पिता ज्यादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे दोनों ही अपनी अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। असल में कुछ साल पहले दोनों का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें दोनों का शरीर के हिस्से काफी हद तक पैरालाइज हो गए थे। फिलहाल उसके बड़े भाई ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो हम उससे मिल लेते हैं, अगर वो भी तुम्हें पसंद करता है तो हम तुम्हारी शादी उसी से करवा देंगे। ये सुनकर नैना खुशी से अपने भाई के गले लग गई और फिर गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं चारों भाई एक साथ बैठकर सोचने लगे, आखिर हमारी बहन को क्या हो गया है, आज तक उसने हमारी हर बात मानी है, फिर इस डॉक्टर में ऐसा क्या है। देर न करते हुए चारों के चारों उस डॉक्टर राजवीर जिंदल का पता लेकर उसके घर पहुंच गए। उधर कमरे में बैठा राजवीर पहले ही स्क्रीन पर देख चुका था कि इस वक्त उसके चारों साले सामने खड़े हैं। वो उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था, फिर उसने उन्हें अंदर बुलाने का इशारा किया। अंदर आते ही चारों भाई गुस्से में राजवीर को घूरते हुए बोले, क्या कहा है तुमने हमारी बहन से, देखो हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, लेकिन हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारी बहन के साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने हमारी बहन के साथ, सभी भाई एक साथ गुस्से में बोले थे। राजवीर अचानक पागलों जैसी हंसी हंसने लगा था और फिर एकदम शांत होकर चारों भाइयों को अलग अलग देखते हुए बोला था, तुम्हारी बहन को मैंने अपने प्यार में पागल कर दिया है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो उसे मेरे प्यार के जाल से निकाल कर दिखाओ, और एक बात और, तुम चारों ने मुझ पर हाथ उठाया है ना, अब तुम्हारी बहन को मैं बिना शादी के अपने पास रखूंगा, बल्कि यूं कहूं कि उसे अपनी रखेल बनाकर रखूंगा, और तुम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर चारों भाइयों के खून में आग लग गई थी। उन्होंने एक बार फिर राजवीर पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही राजवीर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उन्हें पकड़वा दिया था, और ठंडे स्वर में कहा था, ये गलती दोबारा मत करना। एक बार तुम राजवीर जिंदल पर हाथ उठा चुके हो, लेकिन अब नहीं। अब तैयार हो जाओ राजवीर जिंदल के बदले के लिए। राजवीर ने ये बात बड़े ही पागलपन भरे अंदाज में कही थी। उसके इशारे पर गार्ड्स ने चारों भाइयों को बाहर फेंकवा दिया था। चारों भाई गुस्से से दिल मिलाते हुए सीधे घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उनका गुस्सा हैरानी में बदल गया। उन्होंने देखा कि राजवीर जिंदल पहले से ही घर में मौजूद था, घुटनों के बल बैठा हुआ, बुरी तरह जख्मी हालत में, और नैना के सामने हाथ जोड़कर बार बार कह रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी आपकी आंखों के सामने नहीं आऊंगा। मुझे नहीं पता था कि आपके पास आने पर आपके भाई मेरा ये हाल कर देंगे। देखिए ना, आपके भाइयों ने मुझे किस तरह मारा है, कुत्तों की तरह मारा है। पहले भी मेरी कोई गलती नहीं थी और इस बार भी बिना वजह मुझे मारा गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राजवीर का ऐसा रूप देखकर चारों भाइयों की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वे तुरंत नैना की ओर देखते हुए बोले, छोटी, इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये एक नंबर का धोखेबाज इंसान है, हमने इसे हाथ तक नहीं लगाया, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन नैना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। वो बोली थी, नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा, गलती आप लोगों की है, आपने मुझे धोखा दिया। आपने कहा था कि आप लोग जाकर उससे अच्छे से बात करेंगे और हमारी शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपने इस पर हाथ उठा दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर नैना ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर वहां से बाहर जाने लगी। राजवीर नैना के सामने तो मासूम और कमजोर बनकर खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर उसके भाइयों, भाभियों और छोटे भतीजों की ओर देखा, उसके खून से सने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी वो हंसी इतनी डरावनी थी कि छोटे छोटे बच्चे डरकर एक दूसरे से लिपट गए थे। नैना बिना कुछ समझे राजवीर को लेकर बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसके बड़े भाई ने समझदारी दिखाते हुए आगे आकर रास्ता रोक लिया। वो बोला, छोटी, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें राजवीर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, हमें माफ कर दो, लेकिन हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारे सामने ही राजवीर और तुम्हारी शादी फिक्स कर देते हैं, बस हमें इस पाप में मत धकेलो, हमें छोड़कर मत जाओ।
जैसे ही उसके भाई ने ये बात कही, राजवीर के माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसका प्लान था कि वो खुद को जख्मी दिखाकर नैना को इमोशनली अपने साथ ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो खेल ही पलट गया था। अब नैना ने तुरंत राजवीर का हाथ छोड़ दिया और अपने भाई के जुड़े हुए हाथ पकड़ते हुए बोली, भैया प्लीज हमारे सामने हाथ मत छोड़िए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए। और फिर उसने हल्की झिझक के साथ राजवीर की ओर देखते हुए कहा, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अब राजवीर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने एक गहरी नज़र नैना के भाई की ओर डाली और फिर नैना को देखते हुए बोला, ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगा। ये सुनते ही नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, तो ठीक है, हम कल ही शादी कर लेते हैं। ये कहकर वो अपने भाई के गले लग गई। वहीं दूसरी ओर राजवीर ने एक खतरनाक नज़र से उसके भाई की ओर देखा, मानो मन ही मन कोई नया खेल सोच रहा हो। तभी नैना का भाई उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे लेकिन सख्त स्वर में बोला, क्या लगा तुम्हें, तुम हमारी बहन को ऐसे इमोशनल जाल में फंसा कर ले जाओगे और हम देखते रहेंगे? वो मासूम है, उसे दुनिया की समझ नहीं है, लेकिन मैंने दुनिया देखी है और मैं अपनी बहन को तुम्हारे जैसे पागल इंसान के साथ कभी नहीं रहने दूंगा। और अब मैं तुझे साफ साफ खुली चुनौती देता हूँ, कल के कल ही यहाँ से भाग जा। अगर तुमने अपनी शक्ल हमें दिखाने की कोशिश की तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा और तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे अपने जन्म लेने पर भी अफसोस होगा। नैना की नज़र थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसका भाई बड़े धीरे धीमे स्वर में राजवीर को समझा रहा था, बल्कि उसे धमकी दे रहा था। वहीं राजवीर अपनी आंखों में हल्की सी चमक लिए नैना के भाई को देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर माथुर, बड़े दिनों के बाद दिमाग चलाने में मज़ा बहुत आएगा। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी बहन को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा और तुम्हारा परिवार आज ही खुशी खुशी एक साथ रहेगा, लेकिन तुमने तो मेरे पागलपन को हवा दे दी। अब तुम्हें पता चलेगा कि राजवीर जिंदल का पागलपन आखिर किस हद तक जा सकता है और किस हद तक जाकर वो क्या क्या कर सकता है। ये कहते हुए उसका चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। एक पल के लिए राजवीर की बातें सुनकर नैना के भाई के हाथों में कंपन सी आ गई थी, क्योंकि आज तक उसने हर तरह के चोर उचक के गुंडे बदमाश और आवारा लोगों को फेस किया था, लेकिन राजवीर जो कि दुनिया की नज़रों में एक महान डॉक्टर था, वो कुछ तो अलग था। उसमें कुछ ऐसा था जो सबकी नज़रों से पूरी तरह छुपा हुआ था। फिलहाल नैना के भाई ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो कहा है उस पर ध्यान दो, ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, वरना कहीं तुम डॉक्टरी करने के लायक भी नहीं रहोगे। ये बोलकर उसने राजवीर को वहां से जाने के लिए कहा। वहीं राजवीर खून से सने चेहरे के साथ बार बार नैना के पूरे परिवार को देखता रहा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुछ सोचते हुए सीधा वहां से जाने लगा। लेकिन तभी नैना ने उसे आवाज़ लगाकर रोका और कहा, कल हमारी शादी हमारे घर के इसी आंगन में होगी और हम आपका दुल्हन बनकर इंतजार करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर आएंगे।
जैसे ही नैना ने ये कहा, राजवीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं जरूर आऊंगा आपसे शादी करने के लिए। ये कहकर राजवीर ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया था और उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। दोस्तों, नेक्स्ट 3 से 4 एपिसोड में सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप लोग अपना साथ बनाए रखेंगे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।